ये प्रयास शरीर को सुंदर बनाने का मेरे द्वारा कई बार किया जा चुका है और मुझे सिर्फ असफलता मिली है इसमें, कभी कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी, एक छोटा सा उदाहरण लें तो शायद समझ में आए। देह का सदुपयोग करें और देह का सौंदर्य ना बढ़ा करके अगर चेतना का सौंदर्य बढ़ाना शुरू करें तो देह भी पवित्र हो जाती है। कैसे? देखो, भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी देह कैसी हो जाती? परम औदारिक, एकदम पवित्र। मुनि महाराज की देह को कोई अपवित्र मानता है? नहीं। अपवित्र मानते तो ढोक कैसे देते? पवित्र मानते हैं, सौ सौ बार प्रणाम करते हैं। उस देह को ही तो, वो कहां दिख रही है? उसके भीतर की चेतना दिख रही है क्या? लेकिन वो देह भी रत्नत्रय भीतर होने की वजह से पवित्र हो गई। रत्नत्रय पवित्र थे, स्वभाव तो असुचौ काये। स्वभाव से जो शरीर अपवित्र है वो भीतर की गुणवत्ता की वजह से पूज्य हो गया है। मैं देह को इस तरह पवित्र बना सकता हूं, नहलाने धुलाने से ये पवित्र नहीं बनेंगे। मैं इसको स्वच्छ बनाने के लिए अपनी चेतना को स्वच्छ बनाऊं, जितना जितना मैं चेतना को स्वच्छ बनाऊंगा उतनी ये देह भी पवित्र होती चली जाएगी। देह की पवित्रता का उपाय न करके, उसकी अपवित्रता को जान करके चेतना की पवित्रता का उपाय किया जाए तो शायद ठीक ठीक हम इस भावना का चिंतन कर पा रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। अकेले देह को अपावन जान करके उससे घृणा करना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि देह अपावन है उसे पावन न बनाने का उपाय करते हुए, और हम वास्तव में अपनी चेतना को अगर पावन बनाएं तो देह अपने आप पावन होती चली जाएगी। देह का संसर्ग मुझे अपावन बनाता है, देखा जाए तो मेरी चेतना को देह का संसर्ग ही अपावन बनाने वाला, और कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे अपावन बनाती। सबसे ज्यादा जितनी देह में आसक्ति है उतनी बार मुझे बार बार देह मिलती है, और अगर इस देह में मैं आसक्ति ना रखूं, इसके संसर्ग से बचने का उपाय करूं तो शायद अपनी चेतना को पवित्र बना पाऊं। छोटा सा उदाहरण, एक उपगुप्त हुए हैं जो कि बौद्ध भिक्षु हो गए थे, बहुत सुंदर शरीर था उनका, और उस समय वैशाली में वासव दत्ता हुआ करती थी जो कि बहुत सुंदर थी। वासव दत्ता को बहुत लोग चाहते थे, लेकिन वासव दत्ता किसी को नहीं चाहती थी सिवाय उपगुप्त के। बड़ी अजीब सी कहानी है, जिसे दुनिया चाह रही है वो जिसको चाह रहा है वो उसको बिल्कुल नहीं चाह रहा है, बड़ा कंट्राडिक्शन है। उपगुप्त का कोई लगाव नहीं था, लेकिन सारा वैशाली वासव दत्ता के पीछे था कि वो मुझे मिल जाए। किसके पीछे था अगर देखा जाए तो? उसके शरीर के पीछे था, और उपगुप्त का ध्यान शरीर की तरफ था ही नहीं। उपगुप्त भिक्षु बन गए, इतना सुंदर शरीर होने के बाद भी वे तपस्या करने लगे। वासव दत्ता ने निवेदन किया कि आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के अच्छी गृहस्थी बनाएं और फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन के बाद संन्यास धारण करेंगे, अभी क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं आप? उपगुप्त ने कहा कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगा तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उपगुप्त ने यह आश्वासन दिया कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। 10, 20, 25 वर्ष के बाद देह का सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब वासव दत्ता से ज्यादा घृणा किसी को भी किसी से नहीं है। सबसे ज्यादा घृणा करने वाले लोग हैं तो वासव दत्ता से घृणा करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे, सबने उसका उपयोग किया इसलिए धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ है, और एक दिन तिरस्कृत और शरीर से अपंग होकर के रास्ते के किनारे वासव दत्ता पड़ी हुई है। मैं इस घटना को जब पढ़ता हूं तो लगता है कि अगर वास्तव में हमें ये शरीर की वास्तविकता ऐसे मालूम पड़ जावे तो हम शायद बहुत आसानी से अपने चेतना को ऊंचा उठाने में लग जाएंगे, वनस्पति की अपने शरीर की पवित्रता के लिए। पड़ा हुआ है वो ज्यों की त्यों है, वो चेतना अभी उसमें, लेकिन अब उसे कोई नहीं चाहता क्योंकि शरीर जर्जर हो गया है, रोग से ग्रस्त हो गया है, यहां तक कि उसे कुष्ठ हो जाने से सारे शरीर से बदबू आने लगी। रास्ते के किनारे पड़ी है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, कोई प्यार भरे सहानुभूति के दो शब्द देने वाला भी नहीं है। सब नाक बंद करके कल तक जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे आज उससे दूर दूर भागते। और मालूम पड़ा उपगुप्त को, तो उपगुप्त सारा भिक्षुओं का समूह छोड़ करके चुपचाप आकर खड़े हो गए वासव दत्ता के पास। वो तो बेहोश थी, उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। इतने गंदे शरीर को भी अपने हाथ से धीरे धीरे करके और उन रोगों को दूर करके एक हफ्ते के बाद जब उसकी आंख खुली तो सामने देखा कि उपगुप्त जिसे उसने पहले चाहा था आज उसके सामने खड़ा हुआ है। और उपगुप्त ने कहा कि तुम चाहती थी कि उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूं, उस समय तो बहुत लोग तुम्हारा साथ देने वाले थे, मैं भी अगर उस समय तुम्हारा साथ देता तो आज न दे पाता, आज मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी चेतना कीमती है, मुझे तुम्हारा शरीर कीमती नहीं है। आज अगर अपन देखें तो जितनी देहाशक्ति संसार में बढ़ रही है उससे मालूम पड़ता है कि हम इस भावना को भूल ही गए हैं कि शरीर अपवित्र है, उसे पवित्र बनाना हमारा भ्रम है। अगर हम चेतना को ऊंचा उठाएंगे तो वह शरीर भी पूज्य हो जाएगा, वरना वो शरीर भी पतित ही है और बल्कि हमें भी पतित ही करता रहता है।